सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम Chandan Gabriel गोकुले भ्राजमानम्
श्री दामोदर अष्टकम। श्री दामोदर अष्टक के संबंध में दो एक बातें। बंगला संस्करण से अनुवादित। अचिंत्य अनंत शक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार कर उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस निर्जास का संपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं और जगत में अपनी भक्त आधीनता का चरम परिचय प्रदान करते हैं। वे परम मनोहर श्री दाम बंधन लीला कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रकट करते हैं। परम धन्य कार्तिक मास का दामोदर नाम से प्रसिद्धि लाभ करने का यही प्रधान कारण है। वैष्णव स्मृति शास्त्र श्री हरि भक्ति विलास के प्रणेता आचार्यपाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कार्तिक व्रत पालन करने के प्रसंग में कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री राधा दामोदर का पूजा अर्चन एवं श्री दामोदर अष्टक नामक स्तोत्र पाठ की विधि का निर्देश किया है। यथा राधिकाम प्रतिमा विप्रह पूज्येत कार्तिके तुयः तस्य तुष्यति तत्प्रीत्ये श्रीमान दामोदरो हरि। दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर अकर्षि पठेत सत्यव्रतोदितम। श्री हरि भक्ति विलास 16 197 198। जो लोग कार्तिक महीने में श्री राधिका की प्रीति के लिए उनका पूजा अर्चन करेंगे, श्री दामोदर उनके प्रति प्रसन्न होंगे। श्री दामोदर अष्टक स्तोत्र पद्म पुराण में नारद शौनक आदि के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा कहा गया है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने इसकी टीका में कहा है कि यह स्तोत्र नित्य सिद्ध है। यह श्री सत्यव्रत मुनि से प्रकट हुआ है और यह श्री दामोदर कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ है। उन्होंने अपनी अनुभूतिपूर्ण विस्तृत व्याख्या में इस दामोदर अष्टक को सुंदर रूप में प्रस्फुटित किया है। मैं श्री दामोदर अष्टक को प्रकाश करने की अभिलाषा बहुत दिनों से पोषण कर रहा था। विशेषतः प्रत्येक कार्तिक महीने में दामोदर व्रत पालन के समय हम सभी लोग मिलित होकर एक स्वर से जब इस श्री दामोदर अष्टक के कीर्तन में प्रवृत्त होते, तब सभी साधकों के हृदय में इसे प्रस्फुटित कर देने की प्रबल आकांक्षा होती। बहुत से साधक भक्तों ने मुझसे इस विषय में विशेष अनुरोध किया था। अब इतने दिनों के बाद श्री दामोदर अष्टक के संस्कृत मूल, संस्कृत अन्वय और श्रील सनातन गोस्वामी पाद की दिग्दर्शनी नामक संस्कृत टीका प्रकाशित हुई। संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ पाठकों के लिए मूल श्लोक का बंग अनुवाद और श्री सनातन गोस्वामी की उक्त टीका का बंग अनुवाद भी इस ग्रंथ में सन्निवेशित हुआ है। वर्तमान युग में संस्कृत भाषा के प्रचलन के प्रति बहुत से कलिहत बुद्धि वाले मनुष्यों की विश्व दृष्टि लक्ष्य की जाती है। ऐसा होने पर भी हम लोग श्री दामोदर अष्टकम नामक संस्कृत ग्रंथ समग्र देश के हित के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। बंगला भाषा भाषी साहित्यों को यह सब प्रकार से स्मरण रखना कर्तव्य है कि बंगला भाषा की उन्नति साधन करने के लिए संस्कृत भाषा हमारे लिए एकमात्र अवलंबन है। संस्कृत साहित्य की उन्नति के साथ साथ बंगला साहित्य की भी उन्नति अवश्यंभावी है। जो लोग संस्कृत साहित्य का उल्लंघन कर बंगला भाषा की उन्नति की कल्पना करते हैं, वे नितांत भ्रांत हैं। इस श्रेणी के साहित्यिकों की भाषा की उश्रृंखलता ही हम सब प्रकार से लक्ष्य किया करते हैं। बंगला भाषा की स्वतंत्रता संस्कृत भाषा के अधीन है, अर्थात स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र स्वतंत्र है। हम इसी नीति के प्रति लक्ष्य कर इस ग्रंथ को विद्वित समाज में उपस्थित कर रहे हैं। दार्शनिक विचार, रचना कौशल, लीला विकास की चमत्कारिता आदि के प्रति लक्ष्य करने से श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह अष्टक साहित्य जगत में एक आदर्श स्वरूप है। जगत गुरु श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने 8 श्लोकों से सम्मिलित इस ग्रंथ की दिग्दर्शनी टीका की विशद रूप से रचना कर साधन राज्य के तारतम्य मूलक विचार का प्रदर्शन किया है। इसमें वात्सल्य और मधुर रस की श्रेष्ठता सब प्रकार से प्रतिपादित हुई है। गोस्वामी पाद ने प्राकृत सहजियों के जहां तहां और जैसे तैसे रास लीला आलोचना करने की अवैधता दिखाने के लिए 8वें श्लोक के शेष भाग में लिखा है, ततश्च तया सह रास क्रीडादिकं परम स्तुति वेनान्ते वर्णयतुम इच्छम तच्च परम गोप्यते वेनानभिव्यञ्जनम माधुरेण समापेत इति न्यायेन किंचित एव संकीर्तनोदेशम प्रणमति। टीका के इस अंश के बंगा उन्माद और उसके साथ संलग्न नक्षत्र चिन्ह के द्वारा पाद टीका इस ग्रंथ में 116 पृष्ठ पर, वर्तमान संस्करण में 104 पृष्ठ पर मुद्रित हुई है। इसमें सहज्य संप्रदाय के अनधिकार चर्चा के संबंध में विस्तृत विचार दिया गया है। सहज्य गण अपात्र होने के कारण रासलीला आस्वादन के किसी भी प्रकार महापात्र के रूप में गण्य नहीं हो सकते। हम लोग जानते हैं भक्ति त्रिलोक अतीत है, इसे त्रिलोक के विचार में लाना संभव नहीं है। वे ऐसा समझते हैं कि जड़ चित हो जाता है और प्राकृत नेत्रों से ही साधन के प्रभाव से भगवान को देखा जाता है। यही प्राकृत सहजियों का विचार है। वे कहते हैं कांसा रस के संयोग से जैसे सोना हो जाता है, प्राकृत शरीर भी भजन के प्रभाव से अप्राकृत हो जाता है। तब उसी प्राकृत चक्षु के द्वारा ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। प्राकृत सहजियों की इस उक्ति को श्रील सनातन गोस्वामी ने वृहद भागवतामृतम ग्रंथ में और श्री दामोदर अष्टक की दिग्दर्शनी नामक टीका में संपूर्ण रूप से खंडन किया है। मानस दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन। इस प्रसंग में चतुर्थ और षष्ठ श्लोक की टीका की विशेष रूप से आलोचना करना आवश्यक है। उक्त दोनों श्लोकों के विचार से प्राकृत सहज्यगण ऐसा समझ सकते हैं मानस ध्यान दर्शन की उपेक्षा नेत्र द्वारा दर्शन की प्रधानता का गोस्वामी पादों ने वर्णन किया है। विशेष लक्ष्य करने का विषय है कि गोस्वामी पाद ने ब्रह्मा के ध्यान में प्राप्त दर्शन की उपेक्षा गोप कुमार के साक्षात रूप में नेत्रों के द्वारा दर्शन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। उसमें गोप कुमार के प्राकृत नेत्रों के दर्शन का गोस्वामी पाद ने विचार नहीं किया है। गोप कुमार के वैकुंठ जगत में अर्थात अप्राकृत भूमिका में उपस्थित होने के बाद चाक्षुष दर्शन की बात कही गई है। वैकुंठ जगत में अप्राकृत भूमि में प्राकृत इंद्रियों की स्थिति नहीं है, इसलिए गोप गोपियों का प्रत्यक्षीभूत भगवत सानिध्य सब प्रकार से अप्राकृत और अतिंद्रिय है। ये प्राकृत सहजियों का इंद्रिय प्रत्यक्षीभूत व्यापार नहीं है। पहले ही मैंने कहा है कि श्री दामोदर अष्टक ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत या दामोदर व्रत के उपलक्ष्य में प्रतिदिन ही कीर्तनीय और पठनीय है। जो दामोदर महीने में श्री दामोदर की प्रीति की कामना करते हैं उन्हें अवश्य ही इस दामोदर अष्टक ग्रंथ के संपूर्ण अंश को प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यही श्री हरि भक्ति विलास का विशेष निर्देश है। इस दामोदर व्रत का विभिन्न रूप से पालन करने का निर्देश शास्त्रों से जाना जाता है। चातुर्मस्या व्रत के भीतर ही ऊर्जा व्रत है। यह एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा से आरंभ होता है एवं एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा को ही इसकी समाप्ति होती है। फिर भी किसी प्रकार से इन तिथियों में विद्या तिथि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं वैष्णव व्रत मात्र में विद्या का परित्याग करना चाहिए, इसलिए चातुर्मस्या और ऊर्जा व्रत के आरंभ और समाप्ति के समय विद्या तिथियों को त्याग कर ही पालन करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत और ऊर्जा व्रत में सूर्य उदय विद्या का त्याग ही श्री हरि भक्ति विलास का अभिमत है। हम लोग श्रील ठाकुर भक्ति विनोद का कार्तिक व्रत के संबंध में एक छोटा सा प्रबंध उद्धृत कर रहे हैं। इस प्रबंध में व्रत समाप्ति की क्रियाएं किस दिन करनी होंगी वह स्पष्ट रूप से निर्धारित है। एकादशी तिथि से जो व्रत आरंभ करेंगे उनके लिए जो विधि है, द्वादशी और पूर्णिमा के दिन भी उसी प्रकार से विधि समझनी चाहिए। प्रबंध यथा कार्तिक व्रत पालन वैष्णव के लिए एक प्रधान कर्तव्य है। अश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ल एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानि तस्यं कुर्या तदिन्द्रितः। श्री हरि भक्ति विलास 16:168। इस वचन के अनुसार प्रतिवर्ष विजयादशमी के दूसरे दिन जो एकादशी होती है उसी दिन से व्रत को आरंभ करना चाहिए और उत्थान एकादशी के दिन यह व्रत समाप्त होगा। इस एक महीने के भीतर जो व्रत पालन किया जाता है उसका नाम नियम सेवा है। नियम सेवा की विधि यह है कि माँ के प्रतिदिन रात्रि के शेष में पवित्र होकर श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए, प्रातः स्नान कर श्री दामोदर का अर्चन करना चाहिए, रात्रि में घृत दीप या तिल तेल का प्रदीप भगवान के मंदिर में जलाना चाहिए, तुलसी के नीचे और आकाश में भी प्रदीप दें, कार्तिक महीने में निरामिष प्रसाद भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा उसी को ग्रहण करना चाहिए। बासी अन्न, दूसरे की शैया, तेल, मधु, कांसे के बर्तन का व्यवहार प्रत्याग करना चाहिए। प्रसाद सेवा के अंत में वैष्णव के संग में श्रीमद् भागवत आदि श्रवण और पठन पाठन करना चाहिए। निरंतर हरिनाम कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि अवलंबन पूर्वक उक्त व्रत पालन कर उत्थान एकादशी के दिन निरंबु अर्थात बिना पानी के उपवास और कृष्ण कथा के माध्यम से रात्रि जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल शुद्ध होकर हरि कीर्तन के अंत में वैष्णव को प्रसाद सेवा कराकर अंत में स्वयं प्रसाद सेवा करें। इसी दिन रात्रि के अंत में व्रत समाप्त करेंगे। ऊर्जा व्रत के द्वारा श्री राधा दामोदर का प्रीति विधान करना ही प्रधान उद्देश्य है। श्री राधा रानी को उज्जेश्वरी कहा जाता है, इसलिए श्री दामोदर की प्रीति के लिए सत्यव्रत मुनि ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय इस वाक्य को संयोजित कर श्री राधा दामोदर की पूजा करना ही श्री दामोदर व्रत का एकमात्र कर्तव्य बतलाया है। हम लोग गौड़ीय वैष्णव के पालनीय 64 प्रकार के भक्ति अंगों में ऊर्जादर का उल्लेख देखते हैं। ऊर्जादर कहने से चातुर्मास्य व्रत को ही संपूर्ण रूप से समझना चाहिए। कोई कहते हैं कि 64 प्रकार के भक्ति अंगों में चातुर्मास्य का उल्लेख नहीं रहने से हम लोग ऊर्जा व्रत का ही पालन करेंगे। 4 महीने का व्रत उद्यापन करने का क्लेश स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे भजन प्रयासी व्यक्ति शास्त्रों के निगूढ़ तात्पर्य से अवगत ना होने के कारण उस श्रृंखलता का परिचय दिया करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री रंग क्षेत्र में उपस्थित होकर चातुर्मास्य व्रत का उद्यापन स्वयं आचरण करके शिक्षा दी है। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित और प्रचारित शिक्षा का अनुसरण करने में असमर्थ हैं, हम लोग उन्हें शुद्ध वैष्णव की श्रेणी में नहीं ले सकते। यहाँ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि षडंग शरणागति में नवदा भक्ति के अंतर्गत केवल आत्मनिवेदन का उल्लेख देखा जाता है। तो क्या हम लोग इससे यह समझेंगे कि शरणागति के अन्य पंचांग निषेध हैं? 6 प्रकार की शरणागति की चरम शरणागति आत्मनिवेदन का उल्लेख करने से ही यह समझना होगा कि अन्य अन्य शरणागति के अंग भी साधारण के लिए निर्दिष्ट हुए हैं। ये अंगांगी भाव से एक ही साधन के रूप में गृहित होते हैं। श्री दामोदर अष्टक के नित्य होने के कारण कार्तिक महीने या दामोदर महीने के अतिरिक्त चातुर्मास्य में भी प्रतिदिन इसका पठन पाठन आवश्यक है। यहाँ तक कि अन्य अन्य महीनों में भी प्रतिदिन यह पठनीय है। दामोदर अष्ट का विशुद्ध भाव से कीर्तन करने से स्वयं श्री दामोदर देव प्रसन्न होंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने विशेष प्रयत्न के साथ इसका संकलन किया है। इस ग्रंथ के संकलन के विषय में हम लोग माननीय पंडित श्रीयुत नवीन चंद्र स्मृति व्याकरण तीर्थ महोदय के निकट विशेष कृतज्ञ हैं। उन्होंने दिग्दर्शनी टीका का बंगानुवाद और अन्वय आदि कार्यों में विशेष सहायता की है। यहाँ तक कि दिग्दर्शनी टीका के कुछ स्थल इस प्रकार दुर्बोध्य प्रतीत हो रहे थे कि इनका पाठ उद्धार करना संभव पर नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत क्लेश स्वीकार कर नवदीप और अन्य अन्य बहु स्थानों में पंडित मंडलियों के साथ परामर्श करके सुसंगत पाठ का उद्धार किया है, इसलिए हम लोग उनके विशेष कृतज्ञ हैं। उक्त टीका हरि भक्ति विलास के षोडश अध्याय के कतिपय संस्करणों में ही मुद्रित हुई है। हम लोगों ने उन्हें मिलाकर मूल श्लोक और टीका को मुद्रित किया है। इस ग्रंथ को निर्भूल छपने के प्रचुर यत्न करने पर भी दो एक स्थानों पर अत्यंत सामान्य भ्रांतियां रह गई हैं, वे सहज ही बहुत गम्य हैं, इसलिए उसके लिए पृथक शुद्धि पत्र नहीं दिया गया। श्री गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ की टीका में उनके रचित बृहद भागवतामृत के विचार का उल्लेख किया है। हम लोगों ने उस विचार को पाद टीका में जोड़ दिया है। उसमें बृहद भागवतामृत के मूल श्लोक और उनका तात्पर्य अनुवाद भी पाठकों को सुगमता पूर्वक समझने के लिए प्रकाशित किया है। अंत में शुद्ध वैष्णव से कातर प्रार्थना है कि चातुर्मस्या व्रत या ऊर्जा व्रत में इस ग्रंथ का पठन पाठन कर उनके प्रसन्न होने से हम लोगों का परिश्रम सफल होगा। ये ग्रंथ बड़ी सुगमता से भी सभी संग्रह कर सकें, इसलिए इसकी भिक्षा भी बहुत साधारण रखी गई है। इति श्री भक्ति प्रज्ञान केशव। प्रस्तावना। श्री गौड़ीय वैष्णवगण कार्तिक माह में श्री दामोदर व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा के उपलक्ष्य में मिलकर प्रतिदिन प्रातःकाल तृतीय पहर और रात्रि के प्रथम पहर में श्री दामोदर अष्ट का उच्च स्वर से गान करते हैं एवं उसका पठन पाठन करते हैं। परम आराध्य ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी गुरुपाद पद्म ने वर्षों पूर्व बंग भाषा में इसका संकलन कर मूल श्लोक अन्वय, मूल श्लोक का बंगानुवाद और शिला सनातन गोस्वामी द्वारा रचित दिग्दर्शनी नामक टीका के साथ इसको प्रकाशित किया था। उन्हीं की प्रेरणा और हेतु की कृपा से आज वह ग्रंथ राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी प्रकाशित हो रहा है। अतः बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अब हिंदी भाषा भाषी वैष्णवजन भी इस ग्रंथ का आस्वादन कर सकेंगे। बहुत वर्षों से कार्तिक माह में मैं प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इस ग्रंथ का पाठ तथा इसकी व्याख्या करता आ रहा हूँ। विदुषी बेटी सविता ने बड़े परिश्रम से मेरी व्याख्या को प्रवचन के समय लिख रखा था। उसने मुझे ये प्रकाशित करने के लिए दिया था। बहुत समय से उसे प्रकाशित करने की इच्छा होने पर भी अवकाश न मिलने पर कुछ विलंब हो गया, किंतु मैंने उसका संशोधन और संवर्धन किया है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में श्रीमान टिरंडी स्वामी भक्ति वेदांत माधव महाराज, श्रीपाद ओम प्रकाश ब्रजवासी MA LLB साहित्य रत्न, कुमारी सविता MA बेटी शांतिदासी, श्रीमान जीव प्रिय ब्रह्मचारी, श्रीमान गिरधारी ब्रह्मचारी, श्रीमान अच्युतानंद ब्रह्मचारी आदि की कंप्यूटर द्वारा मुद्रण, प्रूफ संशोधन आदि में सेवा प्रचेष्टा अत्यंत सराहनीय और विशेष उल्लेख योग्य रही है। मुख पृष्ठ का चित्र श्रीमती श्याम रानी दासी ने प्रस्तुत किया है। बेटी सविता की बड़ी बहन मधु गुप्ता तथा उसके पति रमेश प्रसाद भद्रक वाले ने इस ग्रंथ के प्रकाशन में आंशिक अर्थ की सेवा की है। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व का गिरिधारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भक्ति पिपासु रसिक और भावुक तथा ब्रज रस के प्रति लुब्ध श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ कर आनंदित होंगे। शीघ्रतावश प्रकाशन हेतु इस ग्रंथ में कुछ त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। श्रद्धालु पाठक उसे संशोधन कर पाठ करेंगे और हमें सूचित करेंगे, ताकि अगले संस्करण में हम उन त्रुटियों का संशोधन कर सकें। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालेश प्रार्थी दीनहीन त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति वेदांत नारायण। इंद्र एकादशी सोमवार 18 सितंबर 2006 ई 520 चैतन्याब्द।